जीजू, क्या आप नित्या से मिले हैं? मानव ने बेचैनी से सवाल किया।
दो तीन बार मिला हूँ।
कैसी है वो? मानव ने धड़कते दिल से सवाल किया। कायरव के होठों पर दर्द भरी मुस्कान उधर आई। बिल्कुल वैसी जैसा मैं था एनाया के बिना। एक ही सिचुएशन थी हमारी, जिसे दिल से चाहा वो हमसे दूर था। कहाँ और किस हालत में था हम नहीं जानते थे। तकलीफ में थे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां थी जो हमें कमज़ोर पड़ने की इजाज़त नहीं देती थीं। बस फ़र्क इतना था कि मेरी जिम्मेदारियां मेरी मजबूरी थीं और नित्या ने उन जिम्मेदारियों को खुद अपने लिए चुना था। मैं एनाया को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था और वो दिल में मोहब्बत लिए इस उम्मीद के साथ तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी कि तुम वापस ज़रूर आओगे। नित्या के बारे में सोचकर ही मानव का दिल तड़प उठा। आंखों के आगे उसका चेहरा उभरा और वो बड़ी बड़ी गोल खूबसूरत आंखें जो आंसुओं से भरी उससे शिकायत कर रही थी। मैं वापस जाऊंगा, मुझे जितनी जल्दी हो सके वापस जाना है। कायरस मानव का जवाब सुनकर मुस्कुरा उठा। शायद जानता था कि उसका यही जवाब होगा। कल शाम की फ्लाइट से हम वापस जा रहे हैं, कायरव ने जैसे ही कहा। तीनों को झटका सा लगा। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि कायरव सारे इंतजाम करवा चुका है, इसलिए किसी ने आगे कुछ नहीं कहा। रात का वक्त था, डिनर लग चुका था। स्पेशल डिनर की सारी तैयारी दाइसा ने खुद की थी। सब आ चुके थे। इंतज़ार था तो रामलाल और मानव के साथ काम करने वाले बाकी वर्कर्स का, जिन्होंने इसका बहुत साथ दिया था। कुछ देर बाद गार्ड्स के साथ कुछ आदमी अंदर आए, जिनका वेलकम खुद कायरव ने किया था। उन सब लोगों की भीड़ में रामलाल अलग ही हाईलाइट हो रहा था। धूप में तपा गेहूं हा रंग, घनी तावदार मूछे, सिर पर रंगीन साफा, बदन पर सफ़ेद कुर्ता धोती और कंधे पर पड़ा लाल सफ़ेद गमछा। इस ठेठ राजस्थानी लुक में वो गांव का असली देसी आदमी लग रहा था। उसके अंदाज में अलग सा रुआब था। बोलते समय थोड़ा सिर हिलाने और मूछों पर हाथ फेरने की आदत थी उसे। आंखों में गांव की सादगी और व्यवहार में सौम्यता लिए कमाल की पर्सनालिटी का मालिक था। अमीर था, इतनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक था, लेकिन घमंड जरा भी नहीं था। पढ़ा लिखा था, फिर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूला था। इनाया ने बताया मुझे, आपने बहुत हेल्प की उनकी, इतने वक्त तक अपनी खुद को फैमिली जैसे उनका ख्याल रखा। इसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। थैंक यू की कोई बात को नहीं साहब, हमने कोई एहसान थोड़ी कियो है। इसने बहन मानी है, बस भाई रो फर्ज निभाने की कोशिश करी है। हमें तो खुशी हुई कि हम थारे काम आ सके। आगे कभी थाने हमारी ज़रूरत पड़े तो बस हमें याद कर लीजियो, हम थाने निराश को नहीं करांगे। रामलाल अपने सौम्य स्वभाव की वजह से कायरव की नज़र में आ चुका था। आपकी भी लाइफ में कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो बस मुझे एक बार कॉल कर लीजिएगा। मुझे खुशी होगी अगर मैं कभी आपके काम आ सका। रामलाल मुस्कुराया। फिर सब अंदर आए। थोड़ी देर बैठकर बातें हुई, फिर सब डाइनिंग एरिया में आ गए। राजस्थान की सभी फेमस डिशेज उस टेबल पर सजी थीं। उसका रंग रूप और खुशबू ही ये बताने को काफ़ी थी कि हर चीज़ लाजवाब है। टेस्ट भी बेमिसाल था। जिसने जो टेस्ट किया तारीफ करता चला गया। डिनर से सबकी दिल खुश और आत्मा तृप्त हो गई थी। बाकी सब बैठे मानव से बातें करने लगे। कायरव रामलाल के साथ स्टडी रूम में चला गया, जहाँ नितिन भी उनके साथ था। कायरव ने नितिन को आंखों से कुछ इशारा किया और उसने एक फाइल उसके तरफ बढ़ा दी, जिसे फिर कायरव ने रामलाल की तरफ बढ़ा दिया। रामलाल ने सवालिया निगाहों से बारी बारी दोनों को देखा, फिर फाइल उठाई और पढ़ने लगा। रामलाल की आंखें फाइल के पन्नों पर दौड़ रही थीं। जैसे जैसे वो पढ़ता जा रहा था, उसके चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे। पहले हैरानी, फिर उलझन और आखिर में एक अजीब सी गंभीरता। कुछ पल बाद उसने फाइल बंद की और धीरे से उसे टेबल पर रख दिया। उसकी नजरें कायरव पर टिक गईं। साहब, ये क्या है? उसने हल्की हैरानी के साथ पूछा। कायरव अपनी कुर्सी पर आराम से टिक कर बैठ गया। कॉन्ट्रैक्ट है रामलाल, मेरे अगले प्रोजेक्ट में कारपेंटर का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिला है। जैसे पिछले बार हमारे होटल में लकड़ी का सारा काम तुमने संभाला था, इस बार भी पूरा जिम्मा अब तुम्हारा होगा। रामलाल कुछ सेकंड तक उसे देखता रह गया, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि उसने सही सुना है। महारो, मतलब ये सच में महारे वास्ते है? उसकी आवाज़ में घबराहट और संकोच दोनों झलक रहे थे। नितिन हल्का सा मुस्कुराया, जबकि कायरव की नज़रें अब भी उस पर टिकी हुई थीं, जैसे कुछ सोच रहा हो। रामलाल ने फिर फाइल खोली। आखिरी पन्ने पर जहां साइन करने की जगह थी, उसकी उंगलियां ठहर गईं। मगर अगले ही पल उसने फाइल बंद की और धीरे से कायरव की तरफ सरका दी। माफ करना साहब, पर हम इस पर साइन को नहीं कर सका। क्यों, इसमें दिक्कत क्या है? नितिन थोड़ा चौंक गया, जबकि कायरव अब भी खामोश बैठा गंभीर जांचती निगाहों से रामलाल को देख रहा था। रामलाल ने सिर झुका लिया। जवाब दो रामलाल, मैंने तुम्हें इतनी अच्छी डील ऑफर की है, इसमें तुम्हें प्रॉफिट ही होगा, फिर तुम साइन करने से मना क्यों कर रहे हो? इस बार सवाल कायरव ने किया था। जो भी कियो हमने इंसानियत के नाते कियो था साहब, किसी बदले की उम्मीद में कोनी कियो। आप तो उसे कॉन्ट्रैक्ट बना के हमें शर्मिंदा कर रहा हो। भले ही हम आप जितना अमीर कोनी है साहब, पर अपने किए काम की कीमत इस ढंग से लेना हमें मंजूर कोनी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। रामलाल का जवाब कायरव और नितिन दोनों को लाजवाब कर गया था। कायरव केयर पर बैठे बैठे कुछ देर तक रामलाल को देखता रहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभरी, जैसे उसे रामलाल से इस जवाब की उम्मीद पहले से ही हो। फिर उसने धीरे से फाइल उठाई और दोबारा रामलाल की तरफ बढ़ा दी। रामलाल,
तुम शायद गलत समझ रहे हो। रामलाल ने उलझन भरी नजर से उसकी तरफ देखा। कायरव अपनी चेयर से उठकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। ये किसी एहसान का बदला नहीं है और ना ही तुम्हें खरीदने की कोशिश। जिस दिन मैंने तुम्हारा काम देखा था उसी दिन समझ गया था कि तुम सिर्फ एक कारपेंटर नहीं अपने काम के उस्ताद हो, और मैं अपने प्रोजेक्ट में सिर्फ उन्हीं लोगों को रखता हूँ जो अपने काम में सबसे बेहतर हों। ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी इंसानियत के लिए नहीं, तुम्हारी काबिलियत के लिए है। रामलाल कुछ पल चुप रहा, उसके चेहरे पर अब भी संकोच था। पर साहब, कायरव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। और जहां तक उस दिन की बात है, उस दिन तुमने इनाया, मानव और काकी की जान बचाई थी, और उसके बाद भी तुमने उनके लिए जो भी किया उसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। मैं जानता हूं तुमने बदले में किसी चीज की उम्मीद में उनकी मदद नहीं की थी, बल्कि जो किया इंसानियत के नाते किया। और अब मैं जो कर रहा हूं वो एक प्रोफेशनल डील है जिसमें तुम्हारा और मेरा दोनों का फायदा है, और तुम्हें ये प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम इसके काबिल हो। अगर ये सब नहीं हुआ होता तब भी ये प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को ही मिलता, इसलिए इसे कोई बदला मत समझो, इसे एक मौका समझो, अपने हुनर को आगे बढ़ाने का मौका। कमरे में एक बार फिर खामोशी छा गई। रामलाल की नजरें कुछ पल तक उस फाइल पर टिकी रहीं। उसकी उंगलियां साइन वाली जगह के पास ठहरी हुई थी, जैसे अभी भी मन के अंदर कहीं हल्की सी झिझक बाकी हो। उसने धीरे से कायरव की तरफ देखा। साहब, अगर आप सच में समझो हो कि हम इस काम के लायक हैं तो हम पूरी जान लगा देंगे, पर एक बात पहले ही कह देते हैं, अगर हमें कदे भी लगे हो कि ये सब आपने हमारा एहसान चुकाने खातिर कियो है तो उसके बाद हम फिर कदे भी आपके साथ काम को नहीं करांगे। कायरव के होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। मुझे मंजूर है रामलाल सा। रामलाल सा सुनते ही रामलाल की आंखों में एक पल को अजीब सी चमक उभरी। शायद उसे उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा आदमी उसे इतनी इज्जत देगा। उसने तुरंत सिर झुका लिया। घड़ी मेहरबानी साहब, उसकी आवाज हल्की सी भर्रा गई। अगले ही पल उसने फाइल उठाई और कांपते हाथों से उस पर अपने साइन कर दिए। नितिन के चेहरे पर भी संतोष भरी मुस्कान आ गई। रामलाल ने फाइल बंद करके कायरव की तरफ बढ़ा दी। आज से ये काम हमारा हुआ साहब, और भरोसा रखो आपके भरोसे को कभी टूटने को नहीं देंगे। कायरव ने फाइल लेते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया।
रामलाल एक पल को हिचकिचाया, फिर उसने भी अपना खुरदुरा हाथ उसके हाथ में दे दिया। दोनों के बीच हुई वो साधारण सी हैंडशेक दरअसल एक नए सफर की शुरुआत थी। रामलाल कुछ देर रुका, काकी, मानव और इनाया से बातें की, फिर दोबारा मिलने का बोलकर वो सबके साथ चला गया। मानव, इनाया की मेडिकल रिपोर्ट्स तुम्हारे पास हैं? हाँ, मानव ने तुरंत सर हिला दिया। सुबह याद से मुझे वो रिपोर्ट्स दे देना, इनाया को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। ठीक है जीजू, मैं आपको सारी रिपोर्ट्स दे दूंगा। अब आप दोनों भी आराम करो। मानव और अनीता जी भी अपने रूम में चले गए, नितिन भी चला गया। अब वहां बस इनाया और कायरव ही रह गए थे। चलें? नहीं, मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है, वैसे भी अभी मुझे नींद नहीं आ रही और रात को बाहर टहलने की आदत है मुझे। ठीक है, तो बाहर चलते हैं। कायरव ने इनाया का हाथ थामा और दोनों बाहर लॉन में आ गए। इनाया ने चप्पल साइड में खोल दी और नंगे पैर घास पर टहलने लगी। कायरव भी उसकी हथेली थामे उसके कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, लेकिन इनाया थोड़ी परेशान लग रही थी।
कल कायरव मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाने वाला है, पता नहीं वहाँ क्या होगा। पप्पा बस सब ठीक हो, वरना कायरव बहुत नाराज होगा।
इनाया मन ही मन पप्पा से प्रार्थना करने लगी। टू बी कंटिन्यूड।